पृष्ठ संख्या 275। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय और प्रगति तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में पहले कई स्थानों पर उल्लेख किया जा चुका है। इसका उदय उस समय हुआ जब विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। अपनी स्वतंत्रता कायम रखने, दुनिया को अपना इच्छित आकार देने तथा उपनिवेशवाद के विनाश की प्रक्रिया की गति तेज करने में उनकी गहरी रुचि थी। विश्व पहले ही शीत युद्ध से घिर चुका था। विश्व में सैनिक गठजोड़ हो रहे थे और विनाशकारी हथियारों की होड़ जोरों पर थी, जिसके कारण उनकी स्वतंत्रता के साथ साथ मानव अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा था। वे जिस वैश्विक अर्थव्यवस्था में जी रहे थे, वह घोर असमानताओं और शोषण पर आधारित थी। अपने विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करना जरूरी हो गया था। यही वह परिस्थितियां थी जिनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ और उसने अपना विशेष रूप धारण किया। एशियाई संबंध सम्मेलन। यद्यपि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना औपचारिक रूप से 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन के दौरान हुई, किंतु इसका मूल उद्गम द्वितीय विश्व युद्ध के शीघ्र बाद हो गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने मार्च 1947 में दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस सम्मेलन के कुछ महीने के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, हम एशिया के लोग बहुत दिनों से पश्चिम देशों की अदालतों और चांसलरियों में अर्जी देते आ रहे हैं, अब यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। हम अपने पैरों पर खड़े होना और उनका सबका सहयोग करना चाहते हैं जो हमें सहयोग देने को तैयार हैं। हम दूसरों को हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। अब दूसरे देश एशिया के देशों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। दुनिया के मामलों में अब उनकी अपनी नीतियां होगी। दुनिया पर मंडराते नए खतरे के प्रति चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जाने कितनी बार पश्चिमी दुनिया ने हमें लड़ाइयों और विवादों की आग में झोंका है, और आज भी जबकि एक भयावह युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है, इस परमाणु युग में और युद्धों की बात की जा रही है। इस परमाणु युग में शांति कायम रखने के लिए एशिया को प्रभावकारी तरीके से काम करना होगा। बांदुंग सम्मेलन। 1940 के दशक के अंत तक पश्चिमी देशों का सैनिक संधि संगठन नाटो स्थापित हो चुका था। 1950 वाले दशक के आरंभ में एशिया में भी सैनिक गठबंधन कायम किए जाने लगे थे। शीत युद्ध का पूरी दुनिया में प्रसार किया जा रहा था, जिससे तनाव और तकरारें बढ़ रही थी। इसी संदर्भ में भारत ने चीन के साथ मिलकर पंचशील के सिद्धांत अर्थात शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन सिद्धांतों को 1954 में और भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित समझौते की प्रस्तावना में शामिल किया गया। ये सिद्धांत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अभिन्न अंग बन गए। 1950 वाले दशक के आरंभ में एशिया में कई ऐसे उत्कृष्ट नेताओं का उदय हुआ जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए तथा स्वयं को शीत युद्ध के टकराव से दूर रखने के लिए एशिया तथा अफ्रीकी देशों के बीच एकता कायम करना चाहते थे। 1955 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकार्नो ने बांदुंग में 17 से 24 अप्रैल तक एशियाई और अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में 29 एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले विशिष्ट नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई और मिस्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री गमाल अब्दुल नासिर, जो बाद में राष्ट्रपति बने, शामिल थे। हालांकि इस सम्मेलन में अनेक देशों ने भाग लिया, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, इराक, फिलीपींस, तुर्की और थाईलैंड जैसे देश, जो संयुक्त राज्य के तत्वाधान में निर्मित सैनिक गठबंधनों के सदस्य भी थे। शामिल थे। तथापि इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकृति विज्ञप्ति के माध्यम से उन विचारों का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया जिनमें गुटनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों को अभिव्यक्त किया गया था। मांदुंग सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले एशियाई और अफ्रीकी देशों का सबसे बड़ा सम्मेलन था। बेलग्रेड सम्मेलन 1950 के दशक के मध्य में कुछ गुटनिरपेक्ष देशों के नेता बैठकों का आयोजन करने लगे थे। धीरे धीरे इस विचार का जन्म हुआ कि सभी गुटनिरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 1960 का अधिवेशन ऐतिहासिक था। उस वर्ष अफ्रीका के 17 नवस्वतंत्र देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिया गया था। हाल ही में स्वतंत्र होने वाले नए देशों की संख्या बढ़ने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और अब वह वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया था जिसमें कालांतर में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। उस दौर में जब उपनिवेशों को समाप्त करने की प्रक्रिया तेज हो रही थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रक्रिया को अधिक तेज करने में निर्णायक भूमिका निभाई। 14 दिसंबर 1960 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने औपनिवेशिक देशों और जातियों को स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा को स्वीकृति प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस ऐतिहासिक अधिवेशन में 5 प्रमुख गुटनिरपेक्ष देशों के नेताओं, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्नो, मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो और घाना के एना क्रूमा ने भाग लिया। उन्होंने अगले साल सभी गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन बुलाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। गुटनिरपेक्ष देशों के राष्ट्र अध्यक्षों या सरकारों का पहला सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 को बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ। इसमें 25 देशों ने पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया। यह सदस्य देश थे अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, कांगो, ज़ेयर, क्यूबा, साइप्रस, इथियोपिया, घाना, गिनी, भारत, इंडोनेशिया, इराक, लेबनान, माली, मोरक्को, नेपाल, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब गणराज्य जिसमें तब मिस्र और सीरिया भी शामिल थे, यमन और यूगोस्लाविया। अल्जीरिया अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन अल्जीरिया के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे FLN द्वारा स्थापित कामचलाऊ सरकार को पूर्ण सदस्य के रूप में प्रवेश दे दिया गया था। इसके बाद स्वापो और PLO फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को भी पूर्ण सदस्य के रूप में प्रवेश दे दिया गया। सम्मेलन ने एक घोषणा जारी की जिसमें कहा गया था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत ही शीत युद्ध तथा संभावित सर्वनाश का एकमात्र विकल्प है। आगे यह भी कहा गया, अस्थायी शांति केवल ऐसी ही दुनिया में कायम हो सकेगी जिसमें उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद का प्रभुत्व उसके समस्त रूपों के साथ जड़ के साथ समाप्त हो जाएगा। सम्मेलन ने सोवियत प्रधानमंत्री निकिता खुश्चरेव और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वे युद्ध के खतरों को कम करने और शांति सुनिश्चित करने के लिए पुनः वार्ता आरंभ करें। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के संबंध में घोषणा। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। 1. सभी राष्ट्रों को प्रभुसत्ता संपन्न समानता, सभी जन समाजों को आत्मनिर्णय शक्ति प्रयोग द्वारा प्रदेश हासिल करने की मनाही, राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता और अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति। 2. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्य राष्ट्रों के बीच समानता के आधार पर अधिकतम सहयोग ताकि विश्व की वर्तमान असमानताओं को दूर किया जा सके। 3. सभी देशों के हित में विश्व की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में सभी देशों की समानता के आधार पर पूर्ण तथा सक्रिय भागीदारी। ऐसा करते हुए इस बात का ध्यान रखना कि सभी विकासशील देशों का विकास अधिक तेज गति से हो, साथ ही कम से कम विकसित देशों, जमीन से घिरे देशों और उन विकासशील द्वीपीय देशों के बारे में विशेष उपाय करने की ओर ध्यान देना जिन पर आर्थिक संकटों और प्राकृतिक आपदाओं का सबसे खराब प्रभाव पड़ता हो, किंतु ऐसा करते हुए अन्य विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखना। चौथा, प्रत्येक देश को ऐसा आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था बनाने का अधिकार देना जिसे वह अपने लिए उपयुक्त समझता हो तथा उसके द्वारा अपनाई किसी भी व्यवस्था के कारण किसी प्रकार उसके प्रति कोई भेदभाव नहीं करना। पांच, प्रत्येक राष्ट्र की अपने प्राकृतिक संसाधनों और सभी आर्थिक क्रियाकलापों पर पूर्ण और अस्थायी संप्रभुता। इन संसाधनों के संरक्षण के लिए हर देश को यह अधिकार है कि वह उन पर और उनके उपयोग पर पूरा नियंत्रण रखे और उनके उपयोग के लिए अपनी परिस्थिति के अनुसार जो चाहे साधन अपनाए। ऐसे उपायों में उन साधनों का राष्ट्रीयकरण और अपने राष्ट्रवासियों के हितों में उनका स्थानांतरण भी शामिल है। यह अधिकार राष्ट्र की पूर्ण और अस्थायी संप्रभुता की अभिव्यक्ति है। इस अविच्छेद्य अधिकार के मुक्त और पूर्ण उपयोग से किसी राष्ट्र को रोकने के लिए उस पर आर्थिक, राजनीतिक या किसी अन्य प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। 6, विदेशी कब्जे, विदेशी और औपनिवेशिक प्रभुत्व का रंगभेद, अपार्थाइड के शिकार सभी राष्ट्रों और क्षेत्रों और जन समाजों को अपने शोषण और अपने प्राकृतिक संसाधनों के क्षय और क्षति का पूरा हर्जाना पाने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा 1 मई 1974 को स्वीकृत बुनियादी लक्ष्य। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल लक्ष्य प्रथम सम्मेलन में ही निर्धारित कर दिए गए थे। बाद में इनमें से कुछ लक्ष्यों की व्याख्या करके उन्हें अधिक अस्पष्ट बना दिया गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की रचना करना, नस्लवाद और नस्ली भेदभाव का उन्मूलन करना तथा सूचना साम्राज्यवाद को समाप्त करना शामिल थे। पिछले 47 वर्षों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। 1994 में दक्षिण इसका 109वां सदस्य बना। इनमें से लगभग सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल सदस्य देशों की संख्या 60% संख्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल है। अफ्रीका के सभी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। अफ्रीकी एकता संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के घोषणा पत्र के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत सभी गुटों के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की नीति को स्वीकृति देना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 14 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं जो इस प्रकार है: बेलग्रेड 1961, काहिरा 1964, लुसाका 1970, अल्जियर्स 1973, कोलंबो 1976, हवाना 1979, दिल्ली 1983, हरारे 1986, बेलग्रेड 1989, जकार्ता 1992, कार्टागेना डी इंडियांस, कोलंबिया 1995, डरबन 1998, कुआलालंपुर 2003 और हवाना 2006। अल्जीयर्स में हुए चौथे शिखर सम्मेलन में एक समन्वय ब्यूरो स्थापित करने का फैसला किया गया था जिसे बाद में शिखर सम्मेलनों, मंत्रियों के सम्मेलनों, संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटनिरपेक्ष देशों के समूहों की बैठकों तथा इन बैठकों में अपनाए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संयुक्त प्रयासों में समन्वय स्थापित करने का दायित्व तो सौंपा गया था। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और भविष्य पर शंकाएं उठाई गई। उन शंकाओं का 1992 में जाकर्ता में आयोजित शिखर सम्मेलन में समाधान कर दिया गया। नई विश्व परिस्थिति में आयोजित होने वाला यह पहला शिखर सम्मेलन था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्र अध्यक्षों या सरकारों द्वारा अपनाए गए जकार्ता संदेश में कहा गया था कि 10वां शिखर सम्मेलन गंभीर परिवर्तनों और तीव्र गति से होने वाले बदलाव के ऐसे दौर में आयोजित किया गया है जो महान प्रत्याशाओं के साथ साथ गंभीर चुनौतियों का तथा व्यापक अनिश्चितता के साथ सुअवसरों का काल है। इस संदेश में जोर देकर कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण में हुए सुधारों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के औचित्य और प्रासंगिकता को सिद्ध कर दिया है, जिससे पता चलता है कि विश्व आज भी शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और सुरक्षित नहीं बन पाया है। आगे कहा गया है कि अंदर ही अंदर उबल रहे विवाद, हिंसक तकरार, अतिक्रमण और विदेशी कब्जों, दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप, प्रभुता और प्रधानता स्थापित करने की नीतियों, नस्ली मारकाट, धार्मिक असहिष्णुता, नए प्रकार के नस्लवाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद, राष्ट्रों और समाज के सद्भावनापूर्ण सह अस्तित्व के मार्ग में आने वाली खतरनाक बाधाएं, जिनके कारण अनेक राष्ट्र और समाज मिट्टी में मिल गए हैं। इस संदेश से एक ऐसी दुनिया के निर्माण की प्रतिबद्धता को दोहराया जाएगा जिसमें एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, युद्ध, दरिद्रता, असहिष्णुता हो और जो अन्याय से मुक्त हो, संपूर्ण विश्व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सच्ची पारस्परिक निर्भरता के सिद्धांत पर आधारित हो, तथा जहां दुनिया भर में सामाजिक प्रणालियों और संस्कृतियों की विविधता को सम्मान दिया जाता हो। जाकर्ता शिखर सम्मेलन के बाद के दौर में विश्व की परिस्थितियों में इतने अधिक परिवर्तन हुए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के संबंध में प्रश्न उठाए जाने लगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई और इसके साथ चलने वाली मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। अनेक क्षेत्रों में आतंकवाद भी एक महत्वपूर्ण समस्या बनता जा रहा था। दुनिया की घटनाओं के परिणाम भी प्रकट होने लगे थे, जो संभवतया अब एक ध्रुवीय होता जा रहा था। जैसे पछतावाद की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और एकमात्र महाशक्ति और उसके मित्र देश दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और उनके सत्ता परिवर्तन को अपना अधिकार समझने लगे थे। कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन 2003 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पुनर्जीवित करने पर बल दिया गया। हवाना शिखर सम्मेलन 2006 ने अपने घोषणा पत्र में उन आदर्शों, सिद्धांतों, प्रयोजनों, कृति प्रतिबद्धता को दोबारा प्रतिज्ञा की जिन पर इस आंदोलन की स्थापना की गई थी। इसमें कहा गया था कि राजनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के प्रयोग के प्रति सम्मान के आधार पर एक पक्षीय विश्व प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसमें आगे कहा गया था कि हमेशा से अधिक अब यह अनिवार्य हो गया है कि हमारे देश एकता के साथ स्थिर बने रहें और एक पक्षीय प्रणाली और हस्तक्षेप की नीति का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए अधिक से अधिक जागरूक रहें। घोषणा पत्र में आंदोलन से संबंधित देशों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। एक, राष्ट्रों के समूह के किसी भी राष्ट्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, सत्ता परिवर्तन के प्रयासों का विरोध करना होगा। तीसरा, किसी भी द्वारा कहीं भी और किसी भी उद्देश्य के लिए किए गए आतंकवाद के सभी रूपों और प्रवृत्तियों को नामंजूर करना और उनका विरोध करना, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर और अत्यंत अत्यधिक खतरनाक है। इस संदर्भ में आतंकवाद की औपनिवेशिक शासन अथवा विदेशी प्रभुसत्ता और विदेशी कब्जे के विरुद्ध स्वाधीनता और राष्ट्रीय मुक्ति के लिए किए गए जन संघर्ष के बराबरी नहीं करनी होगी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों में दुनिया के लगभग सभी विकासशील देश शामिल हैं और कुछ विशेष मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद विकास के अधिकार जैसे अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो उन्हें आपस में जोड़ते हैं और इस आंदोलन को निरंतर प्रासंगिक बनाते हैं।